الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله أدب وكما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ گزشتہ ہفتے گزشتہ جمعہ کو ادب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ دین میں اس کا کیا مقام ہے خلاصتاً یوں کہا جا سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پورے دین اور دین کی پوری تعلیمات اور مذہب کی ہر ہر چیز کے اندر سرایت کی ہوئی اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہوتی ہے کچھ چیزیں ایسی اہم ہوتی ہیں کہ ان کی روح اور ان کا خلاصہ اور ان کی جان مذہب سے جڑی ہوئی ہر چیز میں نظر آتی ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز ادب ہے جیسے مسلمانوں کے لیے یہ المیہ ہے کہ دوسرے اور دین کی روح اور خلاصے ان کی زندگیوں سے نکل گئے اس طرف سے لا علمی کا وہ شکار ہو گئے عملی اعتبار سے وہ پیچھے رہ گئے یا دین کے اندر اس چیز کی جو حقیقت تھی اس حقیقت کو انہوں نے بدل دیا اپنی رسمی حقیقت سے یا رسمی عمل سے ایسے ہی ادب کے ساتھ بھی ہوا کہ دین میں ادب کا کیا مطلب ہے اور ہماری نظروں میں ادب کا کیا مطلب ہے دین میں ادب کی کیا حقیقت ہے اور ہماری نظروں میں ادب کی کیا حقیقت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادب کا تعلق صرف ظاہری تعظیم سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ادب کا تعلق ظاہری نہیں باطن سے شروع ہوتا ہے وہ ہمارا ظاہر پہ شروع ہو کے ظاہر پہ ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن دینی اعتبار سے اس کی حقیقت دیکھی جائے تو ادب کی حقیقت کیا ہے دل میں کسی چیز کی عظمت ہونا دل میں کسی چیز کی محبت ہونا دل میں کسی چیز کے اکرام کا جذبہ ہونا اور پھر اس کا یہ اس دلی جذبے کی تکمیل اس کے تقاضے کی تکمیل جس طریقے سے ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو انجام دینا کسی کی بڑائی ہے کسی کی عظمت ہے کوئی بڑا آدمی ہے بڑی شخصیت ہے بڑی چیز ہے بڑی کتاب قرآن پاک ہے مسجد ہے بیت اللہ ہے مدینۃ المنورہ ہے روضہ اقدس ہے مسجد الاقصیٰ ہے یہ جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں مقدس تقدس سے منسوب ہیں ان کے ساتھ میں تقدس منسوب ہے ایسی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز آتی ہے کہ ہاں یہ واقعی بڑی چیز ہے لیکن ان کو ان کے سامنے تعظیم کا ہمارا اپنا انداز ہوتا ہے اس میں اپنے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جیسے بڑے آدمی اگر کسی بات کو ناپسند کرتے ہیں ہم عظمت کے جذبے سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا اکرام ہے جو ان کی تعظیم ہے لیکن وہ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں وہ بات ان کو پسند نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کام کا کرنا ادب نہیں ہے اس کام کا چھوڑنا ادب ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر ادب کی حقیقت کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ ملتی ہے کہ ادب کی اور اخلاق کی حقیقت ہے راحت رسانی اور بات ماننا جس سے آدمی کو آرام پہنچے وہ اس کا ادب ہے جس سے اس کو تکلیف ہو وہ اس کی بے ادبی ہے بات ماننا اس سے آرام ملتا ہے تو یہ ادب میں ہے بات کا نہیں ماننا اس سے آرام نہیں ملتا ہے تو بے ادبی ہے ایسا کام کرنا جس سے آرام ملے یہ ادب ہے ایسا کام کرنا جس سے آرام نہ ملے یہ بے ادبی ہے بولنے میں سوچنے میں اپنے کاموں میں اعمال میں اپنے طرز عمل میں ان ساری چیزوں میں ادب ہی کا دخل ہوتا ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی ادب کرنے والے بھی تھے لیکن ساتھ میں بے تکلف بھی تھے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ادب کرنے پہ آئے تو تکلف سے کام لیں گے اپنے آپ کو اور سامنے والے کو تکلیف میں ڈال دیں گے کسی قدر زحمت میں ڈال دیں گے जहमत के बगैर सामने वाले का अदब किया जाए, जहमत के बगैर बाअदब जो अदब के काबिल है उनका अदब किया जाए, तकल्लुफ के बगैर उनका अदब किया जाए। हजरत साहबा के वाक़यात से हमको इसमें सबक मिलता है, अकाबिर उम्मत असलाफ उम्मत के वाक़यात से हमको इसमें सबक मिलता है कि कैसे किसी चीज़ का अदब किया जाना चाहिए। हजरत साहबा में बल्कि सारी उम्मत में क़ियामत तक के वास्ते जो सबसे अफजल तरीन हस्ती है, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे अदब फरमाया करते थे, बेशुमार वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी के, तमाम उनकी ज़िंदगी तमाम इश्क से और अदब से भरी हुई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत में वो साथी थे, मदीने मुनव्वरा को पहुँचे, वहाँ पर लोग पहले से ही इंतज़ार में थे कि हुजूर आने वाले हैं, और जब आप पहुंच गए तो हजरत अबू बकर को लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे, और उस वक्त वो उनसे मुसाफहा कर रहे थे बड़बड़ के। हजरत अबू बकर हाथ झटके, नहीं मैं नहीं, ये हुजूर हैं, मैं नहीं, अल्लाह का रसूल ये हैं, उस वक्त ये नहीं कह रहे थे। यहाँ समझने की चीज़ है वो क्या है, इतना बड़ा मौका है कि एक उम्मत एक तबका एक शहर के लोग आके एक बड़ी हस्ती से, बड़ी के खातिमुल अंबिया से मुलाकात कर रहे हैं, कौनैन की सबसे अजीम हस्ती से मुलाकात कर रहे हैं, वो अपने ख्याल में ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, ये सबसे अजीम तरीन हस्ती हैं, और हजरत अब गलत फहमी से हजरत अबू बकर को वो हुजूर समझ रहे हैं, चूँकि सफ़र से तशरीफ़ लाए थे दोनों के दोनों, लेकिन हुजूर पाक वसल्लम की हस्ती हर एक के लिए, हजरत अबू बकर के लिए भी और बाकियों के लिए भी तज़ीम के और अदब के और राहत रसानी के काबिल थी, तो उन्होंने लोगों को का रुख उन हजरत पाक वसल्लम की तरफ नहीं मोड़ दिया, बल्कि खुद मुसाफहा करते रहे। क्यों? इस वक्त थकन है, थकन के मौके से लोगों के मुसाफहे में लगा देना मजीद थका देने वाली बात है, लिहाजा मुसाफहा खुद करते रहे। जब देखा कि धूप हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आने लगी है तो साया करने के लिए भी खुद ही खड़े हो गए, तब लोगों को जाके अंदाजा हुआ कि अरे ये तो अबू बकर है, हुजूर तो ये है। फिर इसके पीछे तसव्वुफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो बुजुर्गान दीन ने बहुत अजीबोगरीब बातें लिखी हुई हैं कि नस्बत इत्तेहादी उनको नसीब हो गई थी इस सफ़र के अंदर, बिलखसूस नस्बत इत्तेहादी का जहूर हुआ था उसके ये करिश्मे और उसके ये जलवे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, आठ बातें ऐसी हैं कि उनकी राय पहले हुजरे पाक वसल्लम के सामने और उम्मत के सामने आई और उसके मुताबिक कुरान उतरा, यानी जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय थी वैसे अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है। कितनी बड़ी बड़ा कितना बड़ा शरफ है ये, कितनी बड़ी इज्जत और इकराम की बात है ये। आज अगर हमारे बड़ों की किसी राय से हमारी राय मुआफ़त कर जाती है, यानी बड़े हमारे गायबाने में ऐसी बात कह दें जो हमारी भी राय हमारे भी जहन में आए, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। बात खुशी की होती भी है लेकिन उस खुशी के जज्बे का इजहार किस अंदाज़ से किया जाता है, इस अंदाज़ से किया जाता है कि भाई मैंने जो बोला था हजरत ने भी वही बोला, मैंने जो बोला था हमारे बड़ों ने भी वही बोला। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह से और कुरान से मुआफ़त के बाद क्या कहते हैं, फरमाते हैं वाफ़क तो रब्बी फ़ी थला, मैंने मुआफ़त की अल्लाह की और अल्लाह की किताब की, जैसे अल्लाह का हुक्म आया शुक्र है कि मेरी ज़बान से भी वही निकला, जैसे कुरान उतरा शुक्र है कि मेरी ज़बान से भी वही निकला, जैसे हुक्म आया शुक्र है कि वैसे ही मेरे जहन में राय आई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है कि खुद हुजूर ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मुझसे कुछ बड़े हैं ना, अंत अकबरु मिन्नी, सवाल ये अंदाज में, और दूसरों की तरफ मंसूब होकर भी आता है कि उन्होंने पूछा आप बड़े हैं या हुजूर बड़े, तो उनका जवाब देखिए। अब बड़े तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु 2 साल बड़े थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चचा हैं, तो वो जवाब देते हैं कि बड़े तो हुजूर ही हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है, बड़े तो हुजूर ही हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है, बोलने का अंदाज़ है कि दिल में अदब है तो फिर अदब का इजहार उसी अंदाज से होता है, दिल में इकराम है तो फिर उसका इजहार उसी अंदाज से होता है, अहकाम पे जब जद पड़ती है तब उसको मेंटेन करना और अदब के तकाज़ों को पूरा करना बहुत अहमियत रखता है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू सुफियान की साहबजादी और उम्मुल मोमिनीन हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में दाखिल हैं। जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा और आपसे निकाह फरमाया। सुलह हुदैबिया के बाद में जो मुद्दत तक सुलह तय हुई थी वो मुद्दत ख़त्म हो गई, तो कुफ्फारे मक्का ने हजरत अबू सुफियान को जो उस वक़्त तक इस्लाम नहीं लाए थे उनको चूज़ किया कि भाई इनको भेजते हैं सुलह की मुद्दत बढ़ाने, उनके अब ये हुजूर के सुसर भी हो गए हैं, तो उम्मीद है कि काम हमारा आसानी से हो जाएगा। वो मदीने आए, हजरत उम्मे हबीबा के घर आए, बेटी के घर आए अपने, बेटी दामाद। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफ बिस्तर लगा हुआ था, एक चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था, वो उस तरफ बैठने लगे हजरत अबू सुफियान। उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं थे। तो हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, बाबा इधर नहीं, इधर नहीं। तो हजरत अबू सुफियान ने पूछा, क्यों, ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूँ? ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? तो हजरत उम्मे हबीबा ने साफ कहा रजी अल्लाह अन्हा कि अदब सिखाया जा रहा है, कि कैसे किया जाता है अदब, कि ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है और ये पाक है। आप कुफ्र की वजह से अभी नजीस और नापाक हैं। मैं नापाक हस्ती को, नापाक वजूद को पाक हस्ती के बिस्तर पर गवारा नहीं कर सकते। अजीब और गरीब वाकयात हजरत साहबा की जिंदगी में मिलते हैं। दो सहाबी थे, उनके नाम जहन में नहीं, वो नौ उम्र थे और तीरंदाजी कर रहे थे। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ, तो आपने एक का नाम लेकर फरमाया, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो, तुम आले इस्माइल में से हो, तुम्हारा बाप भी तीरंदाजी किया करता था। यानी उनको एक जद्दी निस्बत याद दिलाकर एक अच्छे काम पर तरगीब दी जा रही, उभारा जा रहा। फिर उसके बाद कहा कि तुम अच्छे तीर चलाते हो, लेकिन मैं फुलां के साथ हूँ। दूसरे वाले जो साथी थे, जो दोनों मुकाबला कर रहे थे, उनका नाम लेकर कहा कि मैं गालिबा, उनका नाम वरा था, मैं उनके साथ हूँ। तो जो दूसरे तीरंदाज थे, उन्होंने कमान रख दी, या रसूल, आप उनके साथ हो गए तो आपसे मुकाबला तो नहीं हो सकता, कमान रख दी। बच्चे बच्चों में यह अदब, दिल के अंदर ही अजब यह अजमत है। आज हम मस्जिदों का अदब नहीं करते, मदरसों का, दीनी इदारों का अदब नहीं करते, किताबों का अदब नहीं करते, मकामात मुकद्दसा का भी अदब नहीं करते। मसाजिद में आएंगे, जुमा के बयान में भी देख लें कितने लोग फ़ोनों में लगे हुए हैं, कितने लोग फ़ोनों के अंदर लगे हुए हैं। भाई इस मौके से हम आए हैं अल्लाह के जिक्र के लिए, जुमा को हम इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे फ़ोन का इस्तेमाल करना है, फ़ोन यूज़ करने के लिए हम जुमा में नहीं आए। फसाऊ इला जिक्रिल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करने आए हैं। मैं भी और आप भी, बोलने वाला भी, सुनने वाले भी, जो नमाज पढ़ा रहा है वो भी, और जो सुनने वाले, जो पढ़ने वाले हैं वो भी, जो खुतबा दे रहा है वो भी, जो खुतबा सुन रहे हैं वो भी, सबके सब इसी काम के लिए आए हैं। जिस काम के लिए आए तो फिर वो काम करें। इस मौके से फ़ोनों का यूज़ करना इंतहाई दर्जे की बेअदबी है, चाहे किसी को कितना गिरा गुजरे, लेकिन ये बात समझने की है, इस मौके से फ़ोन का यूज़ करना इंतहाई दर्जे की बेअदबी है। किस किस की बेअदबी कर रहे हैं आप? दीनी महफिल की, दीन की बात की, दीनी जगह की, मुकद्दस दिन की और मुकद्दस वक्त की। जुमा का मौका, बयान का मौका, खुतबे का मौका, अहादीस में आता है मुस्तजाब औकात में से है, बंदे की ज़बान से कोई बात निकले तो हो सकता है कबूल हो जाए। ऐसे मौक़ों से हम सारी चीज़ें छोड़ के फ़ोन यूज़ करने में लगे हुए हैं। बेअदबी का हमारे ये हाल है, इसीलिए तो 2 हफ्तों से इस पर बात की जा रही। बैतुल्लाह के अंदर तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ से ज़्यादा फिक्र इसकी है कि मेरी सेल्फी कैसे आ रही, वीडियो कैसे आ रही, लोगों को इसका तासुर कैसे दिया जाए। रोज़े शरीफ के पास मुवाजहे में लगे हुए, अंदाज़ा ही नहीं है किसके सामने ठहरे हुए हैं, अंदाज़ा ही नहीं है किसके सामने ठहरे हुए, किस शहर में है, किस जगह है, किस हस्ती के सामने है, रूबरू होने की कोशिश हो रही। वहाँ पर भी यही फिक्र है, फ़ोन फ़ोन और फ़ोन। अल्लाह पाक हमारी बेअदबियों को माफ़ फरमाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आते, इंतहाई अदब करने वाले थे, हदीस का दर्स दे रहे हैं, चेहरे का रंग आ रहा है और जा रहा है, बदल रहा है, और दर्स दिए जा रहे हैं मुसलसल। सबक ख़त्म होने के बाद एक शागिर्द को कहा कि पीठ में मेरे देखना कुछ हुआ है। उसने उठाकर देखा तो बिच्छू ने 16 दफ़ा डंक मारा था, 16 दफ़ा डंक मारा उनके पीठ पुश्त में। क्या पहले आप बता देते? नहीं, हदीस नबवी का एहतराम ज़रूरी था। मदीने के अंदर सड़कों पर चलते थे तो दीवारों से लग लग के चलते थे, कॉर्नर से, कि दरमियान में हुजूर के कदम पड़े होंगे। वॉशरूम की ज़रूरत पेश आती थी तो फरागत के वास्ते मदीने से बाहर जाते थे। कैसा अदब था अंदाज़ा करें, ऐसा अदब था। बैठते इस तरह से थे कि हुदूद हरम में वजूद हो और फजला वजूद हरम के बाहर गिरे। हज और उमरा कसरत से करने नहीं जाते थे, इस डर से कि कहीं मदीने के बाहर मौत ना हो जाए। बैतुल्लाह का अदब, मकामात मुकद्दसा का अदब, दीनी महफिलों का अदब, दीनी हस्तियों का अदब ज़रूरी है। हमारा अदब कराना मकसूद नहीं है, दीन से जुड़ी हुई हर चीज़ का अदब हमको भी करना है, आपको भी करना है, हर मुसलमान को करना है। आजकल प्रिंटिंग के आम होने की वजह से पुर्जों का क्या हाल हो जाता, ये जो पेपर्स का क्या हाल हो जाता, हर जगह पड़े हुए नजर आते हैं लोगों के घरों के अंदर। थोड़ा सा बेएहतियाती कभी कभार हर जगह देखने में आ जाती है, घरों के बाहर, सड़कों पर, बस दफा दीनी इदारों में भी इस किस्म की बेएहतियाती देखने में आती है। ये बड़ी अदब सीखने सिखाने की और अपने बच्चों को इसकी तलकीन करने की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, बच्चे ने बेअदबी कर दी तो क्या हो गया, सो वाट, नहीं सो वाट की चीज़ नहीं होती है। बेअदबी करेंगे तो महरूम हो जाएंगे। लपक अदब करने वालों को कैसा नवाजते हैं हजरत बिशर हाफी, इंतहाई दर्जे के बड़े मुत्तकी और सरबर आबुर्दा लोगों में से हैं, मुत्तकियों के इमामों में से हैं, ताबईन में से हैं। पहले ये थोड़ा सा आज़ाद मनुष्य किस्म के इंसान थे, थोड़ा आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते थे, हर किस्म की आज़ादी, खाने पीने की, रहने सहने की और हर किस्म की। एक दफ़ा जाते हुए एक पुर्जा मिला, एक टुकड़ा मिला, पीस ऑफ पेपर मिला, जिसको उन्होंने उठाकर देखा, अरे इस पे तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इस पे तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। उसको धोया, उसके उनके पास उस वक्त के 2 रुपये 2 डॉलर मौजूद थे, उन्होंने उसकी खुशबू खरीद के उसको खुशबू में बसाया, अरे ये तो मेरे अल्लाह का, मेरे मोहसिन का नाम है। गैब से आवाज़ आई, तुमने हमारे नाम को खुशबूदार किया है, हम भी तुम्हारा नाम दुनिया में महकाएंगे। लोगों ने उनसे पूछा कि आपका नाम इस अजमत से लिया जाता है, उनकी ज़िंदगी में इस अजमत से लिया जाता है, मरने के बाद नहीं, क्योंकि लोगों को अमूमन कदर मरने के बाद होती है, उम्मत मुर्दा परस्त थोड़ी सी वाकई हुई है। तो उन्होंने कहा आपकी ज़िंदगी में आपका नाम इस अजमत से लिया जाता है, शुबा होता है कि आपका नाम अम्बिया में शामिल है, यानी इस कदर अजमत से इकराम से पेश आपका नाम लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि वाक़ात तो कुछ ऐसी मेरी ज़िंदगी में है नहीं, बस एक दफ़ा ऐसा वाक़ा पेश आया था कि मैंने अल्लाह के नाम का अदब किया था, वो पुर्जे का, वो पीस का मैंने अदब किया था, उसकी वजह से अल्लाह पाक ने ये मेरे साथ मामला फरमाया। फिर बाद में भी उनकी ज़िंदगी ये मकाम मिल जाने के बाद भी वैसे ही थी। अल्लाह की इस ज़मीन को वो अल्लाह का फर्श समझ के पूरी ज़िंदगी उसके बाद से, तौबा करने के बाद से, कभी चप्पल के साथ, जूते के साथ में नहीं चलेगी, अल्लाह का फर्श है। फिर उस पर भी उनको नवाजा गया। कैसे नवाजा गया? हुक्म मिला परिंदों को कि जहाँ बिशर हाफी का कदम पड़ेगा तुम्हारी बीट नहीं गिरनी चाहिए, तुम्हारा फुजला हुआ नहीं गिरना चाहिए। कहते हैं कि पूरा का पूरा शहर परिंदों के फुजले से पाक होता था बिशर हाफी जहाँ मौजूद होते थे। एक दफ़ा एक बुजुर्ग ने देखा कि एक जगह बीट पड़ी हुई है, तो उसको देख के अंदाज़ा लगाया कि लगता है बिशर हाफी का इंतकाल हो गया, लगता है कि बिशर हाफी का इंतकाल हो गया, कि आज जो है परिंदों ने फुजला कर दिया है, अपनी बीट यहाँ पर गिरा दी है। हो सकता है वो इस शहर से रुख्सत हो गए, इस दुनिया से रुख्सत हो गए हैं, तो फिर उनका यह जो इकराम था इमाम अली बिन के साथ ख़त्म हो गया। अदब करने वालों को अल्लाह पाक नवाजते हैं और बेहद नवाजते हैं, अमल करने वालों से ज़्यादा अदब करने वालों को नवाजा जाता है। इख्तलाफी मसाइल को लेकर आज क्या सूरत हाल है, उलमा को खातिर में नहीं लाना, अहले इल्म को खातिर में नहीं लाना, बाज़ दफ़ा अहले इल्म की तरफ से भी इस मामले में ज़्यादती हो जाती है। ये जो मसलकों का इख्तलाफ है, इख्तलाफी मसाइल हैं, इनमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आपका अपना जो मसलक है उसको आप इख्तियार करके रखें, जैसे इमाम अबू हनीफा के फॉलोवर्स, उनके मानने वाले, उनकी उनके उनकी उनकी जो तहकीक है उस पर एतमाद करें, उसका एहतराम करें और अमल भी करें। इमाम शाफ़ी की जो तहकीक है और उनके मानने वाले हैं उसका इकराम तो करें, अमल ना करें। अहनाफ व शवाफ़े में, अहनाफ व हनाबिला में, अहनाफ व मवालिक के अंदर इख्तलाफात नहीं पेश आते, इख्तलाफात पेश आते हैं दूसरे मसलकों के साथ में। अब जैसे हमारे मुकल्लिद भाई, गैर मुकल्लिद भाई मुकल्लिदीन से थोड़ा सा उलझ जाएंगे, ये इधर से वो उधर से उलझ जाएंगे, वो शुरुआत क्यों होती है इख्तलाफ की, या शिकाक तक नौबत क्यों जाती है, तफरीक़े तक नौबत क्यों जाती है? तफरीक़े तक नौबत इसलिए जाती है कि उन्होंने हमारे मसलक का एहतराम नहीं किया, उन्होंने ज़बान दराजी शुरू कर दी। आमीन आमीन बिल जहर, आमीन ज़ोर से बोलना चाहिए, आमीन आहिस्ता बोलना चाहिए, हाथ यहाँ बांधना, सीने पे बांधना चाहिए, हाथ नाफ के नीचे बांधना चाहिए, पूरे फातिहा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़ना चाहिए, आहिस्ता पढ़ना चाहिए, दोनों तरफ अहादीस मौजूद हैं। अगर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहकीक पेश की है तो उसका एहतराम करो, अमल चाहे ना करो एहतराम तो करो। उन्होंने एहतराम को छोड़ा, ज़बान दराजी शुरू कर दी कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ करने वाले हैं, ये राय पे चलने वाले हैं, ये कियास के कियास पे अमल करने वाले हैं, हदीस को ये कम वक़ात देने वाले हैं। तो अब शुरू हुआ किस्सा, फिर उधर से शुरू हुआ तो फिर इधर से भी शुरू हो गया। तो इख्तलाफी आरा के अंदर दूसरों का एहतराम ज़रूरी है। बाज़ मसाइल अकायद जो होते हैं, उसूल उसूली जो चीज़ें होती हैं, उसमें तबलीग की जाती है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किया जाता है,
فروعی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ترجیح اختیار کر لی جاتی ہے، اس کے اندر تبلیغ نہیں کی جاتی. اصولی چیزیں جیسے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو بولیں گے کہ بھائی نماز پڑھو، کوئی غلط پڑھ رہا، خلاف سنت پڑھ رہا، یعنی کہ ایسے طریقے سے پڑھ رہا کہ نہ احناف کے نزدیک اس کی اجازت ہے، نہ شوافے کے نزدیک، نہ امام مالک کے نزدیک، نہ امام احمد کے نزدیک رحمہم اللہ، تو ان سے کہا جائے گا بھائی ایسی نماز مت پڑھو، یہ کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہوتی. لیکن لڑنا بھیڑنا اس کی تو اجازت نہیں ہے، زبان درازی اس کی تو اجازت نہیں ہے، کچھ جو ذہن میں آئے، جو دل میں آئے، جو دماغ میں آئے وہ بول دینا، اس کی تو اجازت نہیں ہے. مقامات مقدسہ کا احترام کرنا، بیت اللہ کا احترام، حرم مکی کا احترام، حرم مدنی کا احترام، مدینہ کے حرم کا احترام، روضہ اقدس کا احترام، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، حضرات صحابہ کا احترام، اکابر امت کا احترام، علماء امت کا احترام. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، ایک نوجوان بچہ وہ بھی وضو کر رہا تھا، جس جگہ وہ دونوں وضو کر رہے تھے وہ ایک نہر تھی، اور نہر کچھ اس انداز سے تھی اونچ نیچ کہ نوجوان جو وضو کا پانی اس کا گرتا تھا وہ امام احمد کے سامنے سے گزرتا تھا. تو اس کو خیال گیا، ارے یہ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کے ساتھ یہ میرے سے یہ بے ادبی ہو رہی. وہ فوراً اٹھا اور ان کے نیچے آ کر کے بیٹھ گیا جہاں سے ان کا جھوٹا اس کے سامنے سے گزرے. مرنے کے بعد اس کی بخشش صرف اس اکرام کی بنیاد پہ ہوئی، صرف اس بنیاد پہ اس کے اکرام اس کی بخشش کر دی گئی کہ ہمارے ایک بڑے عالم کی تم نے ادب کیا تھا، اس کے علم کا تم نے احترام کیا تھا، ان کو نوازا جاتا ہے. حق تعالیٰ حقیقی معنی میں ادب کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، ادب کے معنی ہم سب کو سمجھا دے کہ ادب کا معنی ہے راحت پہنچانا، جس سے کسی کو راحت پہنچے وہ کام کرنا، چاہے ہمارے لحاظ سے وہ بے ادبی ہو جائے مگر وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ راحت پہنچانا اصل مقصود ہے اور بات کا ماننا اصل مقصود ہے. اور ادب ہوتا ہے ہر چیز کا، اللہ کا بھی ادب ہے اللہ کے احکام کو ماننا، نفس کا بھی ادب ہوتا ہے اس کی مخالفت کرنا، شیطان کا بھی ادب ہوتا ہے اس کی مخالفت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہوتا ہے ان کی تعلیمات پہ چلنا. تو ہر چیز کا ادب ہوتا ہے اور ہر چیز کے لحاظ سے ادب کے معنی بدلتے ہیں، اور اسی کے تقاضوں کی تکمیل کا نام حقیقی معنی میں ادب ہے. اور ادب ایسی چیز ہے کہ عمل سے زیادہ اثر رکھتی ہے، اور بے ادبی ایسی چیز ہے کہ عمل کے بعد بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے ادبی سے حفاظت فرمائے.